दिन भर 26 मार्च दिन रविवार मैं हूं संदीप सोनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की चेतावनी, गुंडे माफिया राज्य से बाहर चले जाएं। सुनिए क्या है उत्तर प्रदेश के जमीनी हालात। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना की, लेकिन क्यों?
वो एक संकेत, एक मैसेज देना चाहते हैं संघ को, भाई दरवाजा खोल लेते हैं, हम भी यहाँ हैं, काफी रुचि रखा है राष्ट्रपति पद में।
आज से सुनिए हिंदी सिनेमा के नायाब संगीतकारों पर आधारित एक विशेष श्रृंखला।
नौशाद साहब अपनी धुनें ज्यादातर पियानो पर बैठ के बनाते थे, वो पियानो पर गाना गाते रहते थे और धुन बनाते।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुंडाराज खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में लिप्त अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं या उन्हें जेल जाना होगा। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों से अपील की कि वो किसी भी ठेकेदारी के काम से ना जुड़ें, बल्कि सिर्फ इसकी निगरानी करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि लोग हफ्ते में एक दिन पेट्रोल और डीजल का उपयोग नहीं करने का संकल्प करें तो उससे नए भारत की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने काले धन पर लड़ाई जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोग डिजिटल पेमेंट के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। अमेरिका के ओहायो राज्य में एक नाइट क्लब में गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सिनसिनाटी शहर में इस क्लब में हमले के समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि अभी तक इस बात के संकेत नहीं है कि ये चरमपंथी हमला था। सिनसिनाटी पुलिस विभाग की जिला कमांडर कैप्टन किम्बर्ली विलियम्स ने ये जानकारी दी। आज सुबह कैमियो नाइट क्लब में इस तरह की घटना सामने आई। ये साफ नहीं है कि ये हमला क्यों किया गया। हम मानते हैं कि गोलीबारी करने वाले एक से ज्यादा लोग थे। 15 लोगों को गोली लग गई है, इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये थे कैप्टन किम्बर्ली विलियम्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर पहाड़ी और सुदूर इलाकों में सुरक्षा के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मोहम्मद और बजोर के कबायली जिलों में बाढ़ का काम जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2,500 किलोमीटर लंबी सीमा है। पाकिस्तान में हाल में हुए चरमपंथी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तल्खियां पड़ गई हैं। अफगानिस्तान के सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि सीमा से चरमपंथ खत्म करने में इससे मदद नहीं मिलेगी और इससे मौजूदा समझौतों का उल्लंघन भी होगा। रूस की राजधानी मॉस्को में हजारों लोग विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी के आह्वान पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शन में शामिल होने आए एलेक्सी नावाल्नी समेत करीब 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए मॉस्को में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। ये प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने प्रधानमंत्री मेदवेदेव पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। एक वीडियो संदेश में विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी ने ये कहा, मैं खुश हूं कि कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे जहां कई दशकों से कोई प्रदर्शन नहीं हुए थे। सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार का मतलब गरीबी लाना है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये थे एलेक्सी नावाल्नी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की सेना ने सिलहट शहर में एक इमारत में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने 2 संदिग्ध इस्लामिक चरमपंथियों को मार गिराया है। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने बताया कि अभी भी इमारत में अन्य चरमपंथियों के छिपे होने की संभावना है। शुक्रवार सुबह से सिलहट में सुरक्षा अधिकारियों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कल इस इमारत के पास हुए 2 धमाकों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई थी। बेलारूस की राजधानी मिंस्क में कल एक विशाल रैली में हिस्सा लेने आए कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें शामिल प्रदर्शनकारियों को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के कर सुधारों के नए फैसले के विरोध में बेलारूस में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं दिन भर बीबीसी हिंदी रेडियो पर शाम की सभा। आपके साथ मैं हूं संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने गोरखपुर में अपने प्रवास के दूसरे दिन कहा कि वे हर दिन 18 से 20 घंटे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करा देंगे। अपराधियों को अब उत्तर प्रदेश से चले जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रशासन और अपराध की जमीनी स्थिति पर बात करेंगे हम आगे, लेकिन पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने क्या कहा है।
हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा।
ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। मैंने आपसे कुछ देर पहले लखनऊ फोन लगाया और वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी से जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध, प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी जिस तरह के दावे कर रहे हैं उनकी जमीनी स्थिति क्या है।
मुख्यमंत्री योगी जी से काफी लोगों को अपेक्षाएं हैं और जो प्रचंड बहुमत मिला है उनको, उससे वो साफ है और उनको ये भी पता है कि 2019 में अभी फिर जनता के बीच जाना होगा। जैसे अखिलेश यादव 2012 में बहुमत से आए थे लेकिन जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वो केवल 5 सीटें जीत पाए, तो उनको काम को करके दिखाने का एक प्रेशर है दोनों तरफ से, जनमत की वजह से भी और समय की वजह से भी। तो उन्होंने एक तरह से सरकारी कर्मचारियों को ये चेतावनी दी है कि वो ठीक से काम करें, और शायद सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा ये चेतावनी उनको अपने मंत्रिमंडल के लोगों के लिए भी है। लेकिन जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है तो वो अगर 8-10 घंटे काम कर ले तो वही बहुत है।
रामदत्त जी, उत्तर प्रदेश में मौजूदा हाल में प्रशासन की जमीनी स्थिति कैसी है उत्तर प्रदेश में?
कि प्रशासन की जमीनी स्थिति में हमारे यहाँ दो समस्याएं हैं। पहली बात तो कि ज्यादातर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है उसमें स्थानीय विधायक या सांसदों की सिफारिश से लोग जाते हैं, तो एक तो वो पक्षपात करते हैं, फिर रिश्वतखोरी करते हैं, उनको डर नहीं होता और वो ठीक से काम नहीं करते हैं। दूसरी समस्या ये है कि स्टाफ की बहुत कमी है, सालों साल से भर्ती नहीं हो रही है। एक एक जो पंचायत सचिव के पास 6-6, 7-7 ग्राम सभाओं का चार्ज है, एक एक बीडीओ के पास 3-3 ब्लॉक का चार्ज है, तहसीलदार नहीं है, केवल डांट फटकार से काम नहीं चलता, आज विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। दूसरी बात जहां तक योगी जी ने गुंडों बदमाशों के लिए कही है तो लोग सुनना चाहते हैं ऐसी सख्त बात, लेकिन उसमें भी समस्या यही है कि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उस पर ध्यान देना होगा। जो बदमाशों को जिनके पुराने मुकदमे हैं, मुकदमे नहीं चलेंगे, उनको सजाएं नहीं होंगी तब तक डर नहीं पैदा होगा, अभी दंड का भय ही समाप्त है।
अच्छा रामदत्त जी, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि सरकार की बूचड़खानों पर सख्ती की वजह से तमाम दुकानें बंद हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, इस तरह की खबरें आ रही हैं।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव में ये कहा था कि जो अवैध बूचड़खाने हैं वो बंद किए जाएंगे, लेकिन पुलिस ने अति उत्साह में आकर के न केवल अवैध बूचड़खाने बल्कि जो मीट की शॉप्स हैं, दुकानें हैं जहां मांस बेचा जाता है, उनमें तमाम जगह भी गिरवा दिया या उनकी दुकानें बंद करा दिया दोनों मिलकर के। और इसके अलावा कई जगह तो जो बजरंग दल या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाके दुकानें तोड़ फोड़ दी, जला दी, तो इसकी वजह से हड़ताल हो गई है। और इस हड़ताल का नतीजा यह हुआ कि लोगों को मीट नहीं मिल रहा, खास करके जो भैंसे का गोश्त होता है वो नहीं मिल रहा, उसकी वजह से यहाँ जो कबाब लखनऊ का मशहूर था गलावटी कबाब वो नहीं मिल पा रहा, और कई लोगों को आशंका है कि कहीं ये काम कोई बड़ी कंपनियां जो मांस की सप्लाई करती हैं उनके दबाव में तो नहीं हो रहा है उनके इशारे पे।
ये थे लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आज माउंट आबू में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जमकर तारीफ की है। इस तारीफ की वजह समझने की कोशिश करें हम, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उन्होंने कहा क्या है आज।
शुरू से लेकर के मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिक्षा पाई, उनसे अनुशासन सीखा, उनसे आदर्शवाद सीखा, उनसे ये सीखा कि जीवन में
थे लाल कृष्ण आडवाणी। मैंने आपसे कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन से बात की और जानना चाहा कि लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस की तारीफ इतनी क्यों कर रहे हैं और इस समय क्यों कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इसकी।
आडवाणी जी का जो नाता है संघ से नो डाउट बहुत ही गहरा है, क्योंकि वो राजस्थान में कई साल तक प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन उसमें काफी खटास आ गई थी 2005 में जब वो पाकिस्तान गए थे और खासकर कराची में जिन्ना जी के बारे में कुछ टिप्पणियां वगैरह की जो संघ को नापसंद आई, तो उसके बाद से थोड़ा खटास आ गया था उनके रिश्ते में। हालांकि 2009 में संघ के कहने पे ही बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया, लेकिन इस वक्त आडवाणी जी जो है वो अब मार्गदर्शक मंडल में है बीजेपी के, और ये जो मार्गदर्शक मंडल है ये तो एकदम मार्जिनलाइज्ड है, ना कोई उनकी सलाह लेते हैं, ना वो अपनी सलाह अपने आप भी नहीं देते हैं, तो बिल्कुल एक कोने में पड़े हुए हैं जोशी जी, आडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी वगैरह। तो मुझे लगता है कि आडवाणी जी क्योंकि आरएसएस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वर्तमान सरकार के प्रति, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आडवाणी जी एक चैनल खोलना चाहते हैं आरएसएस की। आरएसएस की अभी की जो कमिटी है वो लोग तो उम्र में काफी कम है आडवाणी जी से, तो आडवाणी जी का डायरेक्ट उनसे कभी कोई नाता ना हो, भले ही जानते तो होंगे, लेकिन ऐसे जो रिश्ता उनकी सुदर्शन जी या राजू भैया जी या भावराव देवरस जी से था, वैसे रिश्ते या अभी जो वर्तमान में है संघ में, चाहे वो भागवत जी हों या भैया जी जोशी हों, उस स्तर का नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक संकेत, एक मैसेज देना चाहते हैं संघ को, भाई दरवाजा खोल लेते हैं, हम भी यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक डेफिनेट संकेत दे रहे हैं वो ब्रह्म कुमारी जी के फंक्शन से संघ को।
राधिका जी, आपको लगता है कि अगले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो अटकलें, जो चर्चाएं आडवाणी जी के नाम को लेकर रही हैं, आती रही हैं, कहीं कुछ इशारा कर रहा है ये घटनाक्रम, कहीं ऐसा संघम शरणम गच्छामि?
जरूर उस कॉन्टेक्स्ट का भी ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट्स आ ही चुके हैं कि आडवाणी जी ने काफी रुचि रखा है राष्ट्रपति पद में, लेकिन अभी उनके खिलाफ वो जो अयोध्या वाला केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चर्चा में आ गई है, तभी अटकलें लगने लगी कि आडवाणी जी का चांस शायद खत्म हो, लेकिन उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा सुनवाई किस दिशा में जाती है। लेकिन ये जरूर ये है कि आडवाणी जी इंटरेस्टेड है राष्ट्रपति जी के पद में। बीजेपी में जो वर्तमान नेतृत्व है मोदी जी और अमित शाह जी का, हमें नहीं मालूम कि वो उतना ही इंटरेस्टेड होंगे आडवाणी जी को वो पद देना, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो उनके रिश्ते हैं मुझे नहीं लगता कि आडवाणी जी अमित शाह जी या मोदी के फर्स्ट चॉइस तो डेफिनेटली नहीं होंगे। तो हो सकता है कि संघ की ओर से वो कुछ प्रेशर तो नहीं करूंगी, लेकिन उन्हें भी कंसिडर करें, ये एक मैसेज देना चाहेंगे, और अगर संघ मानिए उनका नाम लेती है मोदी जी और अमित शाह जी पे, तो अमित शाह जो बीजेपी का नेतृत्व है वो भी थोड़ा तो मजबूत हो ही जाएंगे थोड़ा इनका नाम के ऊपर भी ध्यान देने को।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच के बारे में अधिक जानकारी के साथ आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच धर्मशाला में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 6 विकेट खोकर 248 रन था। स्टंप के समय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा 10 और रविंद्र जडेजा 16 रन बनाकर खेल रहे थे। इस तरह भारत पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 52 रन पीछे है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। आज सुबह भारत ने जब खेलना शुरू किया तब 21 रन तक पहुंचते ही भारत को तब बड़ा झटका लगा जब सलामी बल्लेबाज मुरली विजय जोश हेजलवुड की गेंद पर विकेटकीपर मैथ्यू वेड को कैच दे बैठे। उन्होंने 11 रन बनाए, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और चेतेश्वर पुजारा ने पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी हुई। केएल राहुल 60 रन बनाकर कमिंस का शिकार बने। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा चायकाल के फौरन बाद नाथन लियन की गेंद पर एंडस्कोम को कैच दे बैठे। उन्होंने 57 रन बनाए। बस यहीं से मजबूत लगने वाली भारतीय पारी लड़का अखाड़ा गई। कप्तान अजिंक्य रहाणे 46, करुण नायर 5 और आर अश्विन 30 रन बनाकर आउट होने वाले अगले बल्लेबाज थे। ये सभी नाथन लियन का शिकार बने। नाथन लियन ने 28 ओवर में 67 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। जोश हेजलवुड को 40 रन देकर 1 और पैट कमिंस को भी 59 रन देकर 1 विकेट मिला।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ और बीबीसी हिंदी के श्रोताओं के लिए संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ आज से हम एक खास श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं मोहनलाल शर्मा।
संग संग गुनगुनाओगे कला समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ।
गीत सुनते हुए तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा ये प्रोग्राम आज का नौशाद साहब जैसे विलक्षण संगीतकार पर आधारित है। ये गाना जिसे मुगले आजम में नौशाद साहब ने बनाया था, दरअसल बनारस की पूर्वी अंग की एक ठुमरी से लिया गया है जो राग मिश्र गारा पर आधारित थी, और वो ठुमरी भी जस का तस इन्हीं शब्दों में थी, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, जिसको बहुत सुंदर ढंग से नौशाद साहब ने मुगले आजम की इस धुन में पिरोया। उनकी बनाई हुई ऐसी तमाम फिल्मों की धुनों के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि इनके पीछे उन्होंने अपने उस्ताद बब्बन साहब से लेकर मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जिसे आज का भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ कहा जाता है, कि संगीत प्रोफेसर यूसुफ अली खां साहब से तालीम ली थी। और नौशाद साहब के बारे में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी धुनों में आने वाले अवध के महफिल संगीत का प्रभाव दरअसल लखनऊ बनारस की मशहूर बाइयों के यहाँ तबला पेटी सारंगी बजाने वाले साजिंदों से गुफ्तगू के कारण भी संभव हो पाया है। इसी समय यह जानना भी दिलचस्प होगा कि खुद नौशाद साहब के शास्त्रीय संगीत के गुरु उस्ताद बब्बन साहब भी लखनऊ के लाटुश रोड पर स्थित हस्सों के कोठे पर हस्सों को संगीत की तालीम देने जाते थे। नौशाद साहब ने अपनी जो पूरी रंगत अवध की बनाई है और उसमें जिस तरह से लखनऊ और बनारस बोलता है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम जान सकें कि एक ऐसा संगीत फनकार जिसकी धुनों के पीछे कजरियों, ठुमरियों, दादरों, चैतियों और तमाम तरीके के बारामासा और संस्कार गीतों ने अपना रूप ग्रहण किया है। इसी संदर्भ में हम एक दूसरा गाना भी सुनते हैं जो उन्होंने गंगा जमुना फिल्म के लिए लता जी की आवाज़ में बनाया था। गाने के बोल हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, ये दादरा जो आपने सुना, दरअसल वह पूरब अंग की जिस दादरे पर आधारित है उसके असली शब्द थे, गंगा रेती पर बंगला छवा मोरे राजा आवे लहर जमुनी की। जब नौशाद साहब इस दादरे को कन्वर्ट करते हैं अपने फिल्म म्यूज़िक में, तो उस समय यह जानना ज़रूरी है कि किस तरह से बनारस और लखनऊ की तमाम परतदार रंगतें, छोटे ख्याल से ले करके और उपशास्त्रीय गायन के तमाम प्रकार जिसमें कजरियाँ मौजूद हैं, ठुमरियाँ मौजूद हैं और तमाम बारामासा और संस्कार गीत मौजूद हैं, नौशाद साहब बड़ा चुन चुन के ले आते हैं और उसको अपने ऑर्केस्ट्रेशन से समृद्ध करते हैं। बनारस में इससे पहले जिस गीत पर आधारित ये गंगा जमुना का गीत आपने सुना है, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, विद्याधरी, तमाम लोगों ने इसे गाकर समृद्ध किया है। अवध की तवायफी गजल का रंग जो नौशाद साहब के यहाँ मौजूद है वो जल्दी ढूंढ पाना मुश्किल है। नौशाद साहब पर हम बात कर रहे हैं तो उस समय ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने जब बैरिस कॉलेज से संगीत सीखा और पूरी तरह बाकायदा शास्त्रीय संगीत में उतरे तो उस समय वे हारमोनियम बजाने में बड़े दक्ष थे। खुद उनके अपने संघर्ष के दिनों में गुरबत अली ने अपनी दुकान से उन्हें एक हारमोनियम भेंट किया था लखनऊ से, जिसके बाद उनका संगीत अपने नए पंख लेकर आया। और लता मंगेशकर जी से जब आप बात करिए तो वो ये बताती हैं कि नौशाद साहब अपनी धुनें ज़्यादातर पियानो पर बैठ के बनाते थे। वो पियानो पर गाना गाते रहते थे और धुन बनाते रहते थे, लेकिन उसकी जो जमीन है वो शुद्ध शास्त्रीय रागदारी से निकल कर आती है। कहने का आशय यह है कि सिनेमा की दुनिया में आने से पूर्व नौशाद जिन जगहों पर नाटकों के काम के लिए बाकायदा बंदिशों के गायन के लिए जाते रहते थे हारमोनियम बजाने के लिए, उसमें लखनऊ के बाहर जोधपुर, जयपुर, बरेली और गुजरात के कुछ शहर शामिल हैं। हम तमाम ऐसे गीतों को याद कर सकते हैं जिसको रागदारी के साथ नौशाद ने अपना रंग दिया है। ऐसे गीतों में जिसमें शुद्ध रागदारी दिखाई पड़ती है, बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले राग दरबारी पर, आज गावत मन मेरो झूम के, जिसे पंडित डीवी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान ने अपनी गायकी से सुंदर बनाया है, राग देसी पर आधारित है। और राग देसी की तमाम बंदिशों को तमाम सारे घरानों में, चाहे वो रामपुर सहसवान घराना हो, चाहे वो जयपुर अतरौली हो, चाहे वो ग्वालियर हो, गायक गाते रहे हैं। कोहिनूर में मोहम्मद रफी साहब ने एक बड़ा सुंदर गाना गाया, मधुबन में राधिका नाचेरे, राग हमीर पर आधारित है।
मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे।
लीडर का सुंदर लव डुएट जो मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, ये सुबह के भोर के एक बहुत ही सुंदर राग ललित पर आधारित है। हम जो यहाँ पर रागदारी पर आधारित गाना सुनने जा रहे हैं वो फिल्म शबाब से है, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है और जो एक बहुत ही सुंदर राग मांड पर आधारित है। गीत के बोल हैं, जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती।
जो मैं जानती बिसरत है सैया, जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती, घुंघटा में आग लगा देती। मैं लाज के बंधन
लता मंगेशकर की आवाज में जो मैं जानती बिसरत है सैया, घुंघटा में आग लगा देती, आपने सुना इतने खूबसूरत ढंग से इसे नौशाद साहब ने मांड पर विकसित किया है। इसी समय यह देखना महत्वपूर्ण है कि मुगले आजम के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जो कसूर पटियाला शैली के सर्वोत्तम सर्वप्रतिष्ठित शिखर गायक माने जाते हैं, एक बहुत सुंदर बंदिश गाई थी जो मालकौंस और सोहनी रागों की जुगलबंदी से उपजती है। दो रागों के मिश्रण से जिस तरह नौशाद ने वो रागदारी पैदा की और उसमें सलीम और अनारकली का प्रेम गूंथा, वो गाना सर्वविदित है प्रेम जोगन बन के। नौशाद साहब के संगीत में एक और रंग मिला हुआ है जो उनको एक बिल्कुल अलग ही मुकाम दिलाता है संगीतकारों की श्रेणी में। सोज, मरसिया ख्वानी, सलाम और नात गाने की जो परंपरा है, जो इस्लाम में एक संगीत की परंपरा है जिसमें आप कभी अकीदत और इबादत का संगीत गाते हैं तो सोज और नौहा में गम का नजराना पेश करते हैं और हजरत इमाम हुसैन के शहादत का वर्णन गाते हैं, उस परंपरा में वो खुद एक मुस्लिम फनकार थे, लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती से फिल्म इंडस्ट्री में तीन सुंदर नातों का सृजन किया, वह फिल्म संगीत के लिए एक बड़ी धरोहर है। मुगले आजम के लिए उन्होंने बनाया बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, तो पालकी फिल्म के लिए कमली वाले तेरी दुहाई है दिल की कश्ती भंवर में आई है ये नात बनाई, और सोहनी महिवाल के लिए मेरा बिछड़ा यार मिला दे सदका रसूल का। देखने वाली बात है कि तीनों ही नातों को लता मंगेशकर की आवाज़ मिली, जिसमें सोनी महिवाल का नात शुरुआत मोहम्मद रफ़ी करते हैं और बाद में लता जी उसमें शामिल होती हैं। हम यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध और रॉयल अल्बर्ट हॉल में लता जी द्वारा गाई हुई बेहद लोकप्रिय नात की कुछ पंक्तियाँ सुना रहे हैं। नौशाद साहब पर जब हम बात कर रहे हैं और लखनऊ और बनारस की बात कर रहे हैं, तो ये देखने की बात है कि उनके संगीत में उनके द्वारा मिलाए हुए फिल्म संगीत पर कोठों के जो अधिकांश शुरुआती प्रभाव देखे जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका उनके साजिंदों की भी होती थी। स्वयं नौशाद ने यह स्वीकारा है कि उनकी फिल्मों के संगीत पर जो असर है वो अवध की तवायफी गजल और बंदिशों का है। उन्होंने लखनऊ और बनारस के अधिकांश कोठों के इर्द गिर्द बसे हुए पुराने साजिंदों को पकड़कर अपनी धुनों में वैसा प्रभाव डालने की कोशिश की है जैसी उन दिनों खड़ी और बैठकी महफिलों में की जाती थी, और तमाम सारे रंगतों से भरे हुए जो उनके नृत्य गीत हैं, जो उनके मुजरा गीत हैं, और महफिल संगीत की जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें गंगा जमुना में आशा भोसले की आवाज में एक गीत देखा जा सकता है, तोरा मन बड़ा पापी सांवरिया रे।
तोरा मन बड़ा पापी सांवरिया रे, तोरा मन बड़ा पापी सांवरिया रे, मिलाए छल बल से नजरिया।
गीत में नौशाद ने जो रंग बिखेरा है वह उन्हीं साजिंदों से सीखी हुई रंगत का मिला जुला मामला है जो बाद में दूसरे फनकारों में कम मिला। हालांकि मुजरा गीत रचने में उनके समकालीन एसडी बर्मन और रोशन भी अप्रतिम रहे हैं, लेकिन नौशाद के यहाँ जो अवध का रंग है वो दूसरे किसी भी कलाकार के यहाँ मुश्किल से मिलता है। नौशाद साहब के बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, उनके प्रयोग, उनके हस्ताक्षर, उनके संगीत की स्टाइल, उनके गीतों का प्रकार, उसमें बनक, उसमें धुन, उसमें लोच, उसमें फिरत, तमाम सारी चीज़ें जिस तरह से हिंदी फिल्म संगीत का मेयार बनाती हैं उसमें ये कलाकार अपने शिखर पर देखा जा सकता है। चलते चलते हम नौशाद साहब की उस सिग्नेचर ट्यून की बात करेंगे जो हमारे यहाँ हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार होली से संबंधित है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नौशाद और शमशाद बेगम अपने समय के बड़े फनकार रहे हैं, और इन दोनों फनकारों ने मिलकर जिस होली को बनाया है उसके बगैर दुनिया में होली संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जब तक होली मनाई जाती रहेगी तब तक नौशाद जिंदा रहेंगे। हिंदुओं का त्यौहार जिसे एक मुस्लिम फनकार और एक मुस्लिम गायिका गाकर अमर बनाते हैं आपके साथ साझा है, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं नौशाद साहब को ये गीत श्रद्धांजलि के रूप में सुनाते हुए।
होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी।
होली आई रे आई।
संग संग गुनगुनाओगे संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र के साथ इसकी दूसरी कड़ी सुनेंगे आप अगले रविवार। दिन भर में आज इतना ही, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार, दीजिए इजाजत, नमस्कार।